SBS हिंदी पर मैं हूं अनीता बरार। ह्यूमन राइट्स वॉच ने विश्व भर में मानवाधिकार प्रथाओं की अपनी वार्षिक समीक्षा जारी की है और संगठन की रिपोर्ट में पाया गया है कि कई प्रथाएं ऑस्ट्रेलिया के मानवाधिकार रिकॉर्ड को खराब कर रही हैं। ऑस्ट्रेलिया में औसतन 4,500 से अधिक बच्चे यूथ जस्टिस की निगरानी में हैं। इसमें से आधे से अधिक बच्चे स्वदेशी यानी इंडिजिनस हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा है कि अन्य मुद्दों के अलावा आपराधिक न्याय प्रणाली में बच्चों के साथ ऑस्ट्रेलिया का व्यवहार देश के मानव अधिकार रिकॉर्ड को खराब कर रहा है और ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने इस पर आवाज उठाई है।
It's gone from bad to worse. What we do know as well in Australia is that there's no Human Rights Act. So there's no overarching piece of legislation that sort of puts all the human rights regulations and rules and responsibilities into one place. Australia is the only liberal democracy that doesn't have a Human Rights Act.
ये थी Human Rights Watch की ऑस्ट्रेलियाई निदेशक डैनियला गैफशॉन। उनका कहना है कि रिपोर्ट में 100 से अधिक देशों में मानवाधिकार प्रथाओं की समीक्षा की गई और हालांकि ये कोई स्कोर कार्ड या तुलना उपकरण तो नहीं है, फिर भी ये वैश्विक रुझानों पर प्रकाश डालती है कि पिछले साल कई चुनावों में या तो अधिकार विरोधी एजेंडे रहे या अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करते हुए जिसका समर्थन मिला और ये चिंताजनक है।
There were 70 elections last year in 2024 across the globe. Many of these elections we saw leaders, autocratic or authoritarian leaders who had platforms of, anti-rights agendas or agendas that sort of single out or oppressive against minorities gaining traction and gaining support. Obviously that's incredibly concerning and worrying.
पिछले वर्षों की तरह रिपोर्ट ने ऑस्ट्रेलिया को एक जीवंत लोकतंत्र के रूप में स्वीकार किया है जो अपने नागरिकों की नागरिक और राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करता है, लेकिन आपराधिक न्याय प्रणाली में युवा लोगों के साथ ऑस्ट्रेलिया के व्यवहार के साथ साथ शरण चाहने वालों के व्यवहार को लेकर चिंताओं को निरंतर मुद्दों के रूप में चिन्हित किया गया है।
They keep appearing because I think on some level human rights aren't placed at the forefront of government policy. I think a lot of the time they become politicised. Certainly we see that with the refugee and asylum seeker issues and the way Australia treats refugees and asylum seekers. Certainly what we've seen is massive backsliding in terms of youth justice.
पिछले एक साल में सरकारें, खासतौर पर नॉर्दर्न टेरिटरी और क्वींसलैंड की सरकारें अपराध के प्रति सख्त रुख अपना रही हैं। कैथरीन हेस क्वींसलैंड में यूथ एडवोकेसी सेंटर के मुख्य कार्यकारी हैं। उनका कहना है कि ये एक व्यापक प्रवृत्ति को दिखाता है। प्रतिशोध और दंड क्वींसलैंड में प्रमुख बात बन गए हैं और ये पूरे ऑस्ट्रेलिया और यहाँ तक कि संयुक्त राज्य अमेरिका और यूके जैसे अन्य देशों में भी इसकी बात हो रही है। ये देखा गया है कि क्वींसलैंड में बच्चों को निगरानी गृहों में बंद रखना जारी है और पिछले साल अक्टूबर में नॉर्दर्न टेरिटरी में आपराधिक जिम्मेदारी की आयु 12 से घटाकर 10 कर दी गई थी। अक्टूबर में ही नॉर्दर्न टेरिटरी के अधिकारियों ने घोषणा भी की कि स्पिट हुड्स का फिर से बच्चों पर इस्तेमाल किया जाएगा। ये मानवाधिकारों की चिंता को बढ़ाता है। हेस का कहना है कि इतने छोटे बच्चों को बंद नहीं किया जाना चाहिए।
Seeing a 10-year-old being locked up in a detention centre or a watch house is absolutely horrific and alarming because these are kids who are still developing, and for a 10, 11, 12 or 13-year-old to end up in detention or in the state's custody, there has to be something that's gone seriously wrong in their life.
पिछले साल अगस्त में ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय बाल आयुक्त ने सरकारों द्वारा बाल न्याय के प्रति अपनाए जाने वाले दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण बदलावों का आह्वान किया था। हेल्प वे अर्लियर शीर्षक वाली रिपोर्ट में 24 सिफारिशें की गई थीं, जिसमें आपराधिक जिम्मेदारी की उम्र बढ़ाकर 14 साल करना, एकांत कारावास पर प्रतिबंध लगाना और सभी बाल हिरासत केंद्रों की लगातार निगरानी करना शामिल है। रिपोर्ट में ऑस्ट्रेलिया के उस फैसले की भी आलोचना की गई है जिसमें उन लोगों को भेजना जारी रखा गया है जो बोट से यहाँ आने का प्रयास करते हैं और उन्हें नारू डिटेंशन पर हिरासत में भेज दिया जाता है। नवंबर में सरकार ने नए कानून पारित किए जिसमें गैर नागरिकों को, जिसमें मान्यता प्राप्त शरणार्थी शामिल हैं, उनको तीसरे पक्ष के देशों का भुगतान करके वापस स्वीकार कराया जा सकता है। साथ ही निर्वासन का विरोध करने वालों के लिए जेल की सजा है और हिरासत केंद्रों पर फोन पर प्रतिबंध है। रिफ्यूजी एडवाइस एंड केस वर्क सर्विस की प्रिंसिपल सॉलिसिटर सारा डेल का कहना है कि हार्वर्ड युग के तहत ऑफशोर प्रोसेसिंग और अस्थायी सुरक्षा वीजा जो अतीत की बातें थीं, पिछले दशक में उन्हें फिर से आते देखना बहुत ही चिंताजनक है। सारा डेल एक कानूनी लड़ाई का हिस्सा थी जिसके कारण पिछले सप्ताह संयुक्त राष्ट्र ने एक निर्णय लिया जिसमें पाया गया कि ऑस्ट्रेलिया ने शरणार्थी का दर्जा दिए जाने के बाद भी नारू पर नाबालिगों सहित शरणार्थियों के एक समूह को हिरासत में रखकर मानवाधिकार संधि का उल्लंघन किया है। वे कहती हैं कि ऑस्ट्रेलिया के लिए ये पहचानना महत्वपूर्ण है कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन कितना महत्वपूर्ण है।
If Australia just recognized our obligations, processed people swiftly and supported people as we should, we would be also alleviating a significant amount of suffering, not only for the individuals here in Australia, but globally also.
रिपोर्ट में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि ऑस्ट्रेलिया को दुनिया भर में मानव अधिकारों की रक्षा के लिए और अधिक प्रयास करने चाहिए। ग्याविशोन का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया द्वारा प्रतिबंधों जैसे साधनों का उपयोग काफी नहीं है। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने हमास नेताओं, ईरान, म्यांमार के अधिकारियों पर तो प्रतिबंध लगाए, लेकिन झिंजियांग, तिब्बत में मानवता के खिलाफ किए गए अपराधों के लिए चीनी अधिकारियों पर कोई प्रतिबंध नहीं देखा गया है। उन्होंने कहा कि ह्यूमन राइट्स वॉच अंतर्राष्ट्रीय कानून के शरण के बारे में चिंतित है और वो अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रणाली का उपयोग करने के मामले में अधिक देशों को आगे आने का आह्वान कर रहा है। इस रिपोर्ट को SBS न्यूज के लिए सोफी बेनेट और SBS हिंदी के लिए अनीता बरार ने प्रस्तुत किया।